भाई जी, विशेष करके आप अपनी लौकिक पढ़ाई एमटेक आपने किया हुआ है। एमटेक आप चंडीगढ़ से पास आउट हुए हैं। आप लगभग 11 साल तक आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए प्रोफेसर के रूप में आपने टीचिंग दिया बच्चों को। बच्चों के साथ काफी समय तक आप रहे और उसके बाद अभी लास्ट 4 साल से आप मधुबन में हैं। मधुबन में आप देखना जिंदगी बने आसान, एक आता है जिंदगी बने आसान, और उस जिंदगी बने आसान में उसमें आपने बहुत सारे टॉक प्रोग्राम आपने दिया है, एपिसोड्स आपका है। उसके साथ साथ वो बहुत सारे कॉलेज इंस्टीट्यूट्स जैसे इंडस्ट्रीज व कंपनीज व इन चारों तरफ जाकर के हम बाबा की सेवाएं कर रहे हैं। इसलिए जास्ती समय ना लेते हुए मैं भाई साहब को निवेदन करती हूँ कि आप भाई बहनों को कुछ ऐसे प्रेरणादायी बोल बोले जो कि वर्तमान समय जैसा चल रहा है वो हमें स्व पुरुषार्थ के लिए मदद करे। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सब ने प्यारे बाबा के महावाक्य सुने और बाबा जो हमारा श्रृंगार करता है ज्ञान रत्नों से, कोई व्यक्ति उतना नहीं कर सकता जितना अच्छा बाबा करता है। मैं कितनी भी अच्छी क्लास करा दूं, कितनी भी अच्छी बातें बता दूं, लेकिन जितनी प्यारी बातें बाबा सुनाता है उतना कोई नहीं करा सकता। मानते हैं इस बात को, क्योंकि बाबा ही हम बच्चों को बेगमपुर का बादशाह भी बना देता है, बाबा ही हमें विजयी रत्न भी बनाता है, और बाबा हमें अलग अलग टाइटल देके हमारी कितनी रिस्पेक्ट बढ़ाता है। ऐसे टाइटल तो बड़े बड़े राजाओं को, महाराजाओं को भी नहीं मिलते थे। जो महाराजा का दरबार होता था, पीछे मैं एक जगह गया ग्वालियर, वहाँ सिंधिया खानदान का राज चलता था, उनका बहुत बड़ा महल था। तो राज दरबार में कौन कौन सरदार बैठते थे उनके टाइटल होते थे, लिख रखे थे अलग अलग टाइटल, उस टाइटल के हिसाब से उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से दरबार पे सीट फिक्स होती थी। तो वो टाइटल उनको मिले, लेकिन हमें किसने टाइटल दिए हैं? और ऐसे टाइटल दिए हैं जो दुनिया में कहीं मिलते ही नहीं है। बेगमपुर के बादशाह, बेफिकर बादशाह, बेकौड़ी बादशाह, जेब में कौड़ी नहीं है, है बादशाह। किसी ने सोचा शायद कोई जगह का नाम हो बेगमपुर जहां की ये बादशाह है। तो मैं एक बार दिल्ली में गया, वहां जगह थी सचमुची बेगमपुर, एक सेंटर था, कहते हमारे सेंटर का नाम बेगमपुर है। मैंने सोचा शायद ज्ञान के आधार पे रखा हो, लेकिन वो ऐसे ही नाम था। तो बाबा हमें कितना ऊंचा बना देता था, कभी सोचो क्या थे और क्या बाबा ने बना दिया, कहाँ हम साधारण से दिखने वाले इंसान। और बाबा ने हमारे अंदर कितनी योग्यताएं भर दी, कितने गुण भर दिए कि आज हम बोलने भी लगे। और मैं ही नहीं बोलता, आप भी बोलते हैं। हर व्यक्ति जो एक बार बीके बन जाता है वो बोलना सीख जाता है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिल जाती है प्रदर्शनी समझाने की। हर व्यक्ति को प्रदर्शनी कंपलसरी होती है सेंटर पे समझाना। तो हम भी समझाते थे, समझाते समझाते बोलना सीख गए। हर व्यक्ति को बाबा ने गुणों से संपन्न बनाया है, चाहे वो कितना भी साधारण है, देखने में सिंपल सा है, पढ़ा लिखा है या नहीं है, लेकिन बाबा ने उसके गुणों को, उसकी विशेषताओं को पहचान कर उसको कार्य में लगाया और उसे योग्य बना दिया। इसलिए हम बच्चों को अपने इस ब्राह्मण जीवन के ऊपर नाज है। क्यों नाज है? क्यों गर्व है हमें? क्योंकि हम भगवान के द्वारा सिलेक्ट किए हुए अमूल्य रत्न हैं। दुनिया में तो इलेक्टेड होते हैं, इलेक्शन से जीतते हैं, वो भी थोड़े टाइम के लिए जीतते हैं, और हम स्वयं उस सर्वशक्तिमान की सिलेक्शन हैं। उसकी नज़र हम पे पड़ी, दुनिया में कितने विद्वान, कितने पंडित, कितने गुरु, कितने विज्ञान के लोग, एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े से बड़े पैसे वाले लोग हैं, लेकिन भगवान की नज़रों किसके ऊपर पड़ी? हमारे ऊपर पड़ी। इसका मतलब हम देखते छोटे हैं लेकिन हैं बड़े काम के, तभी तो बाबा ने हमें चुना होगा। हैं हम साधारण लेकिन भगवान की नज़र में विशेष हैं। हर बाबा का बच्चा स्पेशल है। कितनी ऊंची निगाहों से वो भगवान हमें देखता है। हम अपने से पूछें क्या हम भी उतनी ही ऊंची नज़र से अपने आप को देखते हैं, यानी हम भी स्वमान में टिकते हैं, स्वमान में स्थित होकर कर्म करते हैं। बाबा ने हमारी योग्यताओं को पहचाना और हमें करोड़ों लोगों में से चुनकर अपना बना दिया और एक परिवार बना दिया। कहीं पर आप जाओ, मैं तो सब जगह जाता रहता हूँ, सब जगह अपना ब्राह्मण परिवार, सब जगह अपने भाई बहनें, अपने मन की फीलिंग। ऐसा बेहद का परिवार कहीं मिलता है किसको? बेहद का बाप, बेहद का परिवार। किसी भी जगह चले जाओ, दुनिया के किसी भी देश में, अपने बाबा के बच्चे वहाँ भी हैं, मतलब अपने लोग बैठे हुए, कितनी बड़ी बात है। और एक दूसरे से मिलके खुशी होती है। क्यों खुशी होती है?
सब अपने
हैं, क्योंकि जैसे बाबा सिकलीधा है ना, सिकलीधा का मतलब क्या हुआ? बहुत काल से बिछड़ा हुआ, अब मिला। जैसे किसी का बच्चा किसी मेले में गायब हो जाए और 20 साल के बाद माँ को मिल जाए तो माँ कितनी खुश होगी, अच्छा तो मेरा बच्चा था गायब हो गया, दो भाई थे, एक गायब हो गया, एक रह गया। तो हम भी बाबा को तो बिछड़े हुए थे ही, बाबा तो सिकलीधा है ही, लेकिन ये परिवार भी सिकलीधा है। ये परिवार भी तो 5000 साल के बाद मिलता है हमें। 5000 साल के बाद हम एक दूसरे को पहचानेंगे कि हम एक ही परिवार के, बाद में तो भूल जाते हैं। तो वो भी अपनापन का आधार है, इसलिए सबसे अच्छी फीलिंग आती है, खुशी आती है, और ये नशा चढ़ता है कि वाह, बाबा ने हमें अपना बना लिया और इतना बड़ा परिवार दे दिया। आपको होती है खुशी? अपना इतना बड़ा संगठन ऐसे कहीं होता? हर रोज लोग क्लास में आए, बैठे, एक जैसे योग करें, वाणी सुने, इतना बड़ा भाग्य है। तो बाबा ने हमें अपना बना लिया, खुशी की पहली बात ये है। हम बाबा की टीम में आ गए, ये पहली बात है, ये खुशी देती है। जैसे कई लोग कहते हैं जी हम तो अमेरिका के राष्ट्रपति की टीम के लोग हैं, न्यूज में आता है ये आदमी उसकी टीम में है, ये आदमी मोदी की टीम का आदमी है, हम किसकी टीम के लोग हैं? हम उसकी टीम में आ गए, और क्या चाहिए? अच्छा, ये एक कंसेप्ट है, ये खुशी देता है, भगवान मिला, खुशी मिली, लेकिन ये खुशी स्थायी तब रहती है। उसका दूसरा स्टेप है कि भगवान के मिलने के बाद हम करते क्या है। हम टीम में आ गए लेकिन टीम में अब कर क्या रहे हैं? जो करना चाहिए वही करते हैं तो सक्सेसफुल है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, आए तो थे मेडिटेशन सीखने, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, योग सीखने, और यहाँ कई बार और चक्रों में भी उलझ जाता है आदमी, माया उलझा देती है, एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन सदा अपने आप से पूछें कि मैं अब बाबा का बनकर क्या कर रहा हूँ। भगवान मिल गया, लेकिन भगवान जो कह रहा है उस पे चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। आज की वाणी में था जो रास्ता जब सही वाला मिल गया फिर दुख वाले रास्ते पे क्यों जाते हो, जब पता है कि सुख का रास्ता ये है, इस रास्ते में जाना मना है। गवर्नमेंट भी सजा देती है अगर इस रास्ते पे जाना मना हो उस पे कोई चला जाए। तो बाबा ने कहा वो रास्ता दुख वाला बंद हो गया, वो भटकने वाला रास्ता बंद हो गया, अब जो मैं दिखा रहा हूँ वही सच्चा रास्ता है, और जिसको इसके ऊपर निश्चय होता है वो दूसरी पॉइंट आज थी, एक बल एक भरोसा। जिसको निश्चय है, भरोसा है, उसकी विजय हुई पड़ी है। निश्चय बुद्धि विजयंती, उसकी विजय ही अंत में होती है जिसको निश्चय है, और उसी को उसका एक बल, उसकी शक्ति भी उसी को प्राप्त होती है जिसे है कि बाबा मिल गया अब और क्या चाहिए। तन मन धन सब किसका, बाबा का। मेरा है ही नहीं जो दुख मिले, मेरा समझेंगे तो दुख में आएंगे, और उसका समझ लिया तो धन लूट भी गया। मान लो नोटबंदी हो गई, आपके पैसे डूब गए, अगर आपने सोचा होगा मेरे तो हार्ट अटैक, और ये सोचा होगा बाबा के तो कुछ भी नहीं होगा, बाबा के थे बाबा ले गया क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। सोच सोच का फर्क है। तो अब ये ज्ञान हमें यही सिखाता है कि सदा हम अपने आप से पूछें, अपने आप की चेकिंग करते रहें, और अपने आप को याद दिलाते रहें कि मैंने ये बैज क्यों लगाया है, मैंने ये सफेद कपड़े क्यों पहने, मैंने इतना त्याग किया, हर रोज सवेरे उठता हूँ मैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बना तो क्यों बना, क्या मैं वही कर रहा हूँ जो एक ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी को करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ और क्या मुझे करना चाहिए। सदा यह बात कानों में गूंजती रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं अपने समय का सदुपयोग कर रहा हूँ, क्या ये संगम युग की घड़ियाँ सफल हो रही हैं, ये भाग्य बनाने की घड़ियाँ कहीं यूं ही वेस्ट तो नहीं जा रही, ये हीरे तुल्य वक्त कहीं कौड़ियों के पीछे तो नहीं जा रहा। यहाँ तो एक हीरे इकट्ठे करने थे, जन्म जन्म का भाग्य और कलप कलप की प्रारब्ध बनाने का ये समय, संगम युग का ये कमाई का समय मेरा कैसे जा रहा है, क्या मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ जो इस वक्त मुझे कर लेना चाहिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं वो कर रहा हूँ जो केवल इसी वक्त किया जा सकता है संगम युग पे, जो ना पहले किया जा सकता था ना बाद में किया जा सकता है। केवल संगम युग की चंद बची हुई घड़ियाँ जिनमें हम अपना भाग्य ऊंचे से ऊंचा बना सकते हैं। जब मैं प्लस वन प्लस टू में आया, एक हमारे मैथमेटिक्स का टीचर था, वो हमें समझाता था, कहते बच्चों केवल 2 साल हैं लाइफ के कैरियर बनाने के, अगर ये 2 साल आपने मेहनत कर ली जीवन भर आराम से गुजरेगा, ना प्लस वन से पहले कुछ था ना प्लस टू के बाद कुछ है, 2 साल मेहनत कर लो इंजीनियरिंग कॉलेज में सेलेक्ट हो जाओ लाइफ बन जाएगी, ना पहले कुछ ना बाद में कुछ। ऐसे ही ना संगम युग से पहले कुछ था ना संगम युग के बाद होने वाला है। सतयुग में पढ़ाई थोड़ी पड़ेगी, और कलयुग में भी पढ़ाई पढ़ लेते आप वेद शास्त्र पढ़े जाओ सतयुग में फिर नहीं जाओगे। कितनी भी मेहनत दोपहर कलयुग में कर लो, बिना भगवान की गाइडेंस की कोई प्राप्ति खास नहीं थी। अभी जो मेहनत करेंगे वो हमारा भाग्य पूरे कल्प का बनाने वाली है। इसलिए सदा अपने आप को याद दिलाओ कि मेरा ये समय कहाँ बीत रहा है, क्या मैं बाबा का राइट हैंड बना हूँ, क्या मैं बाबा के कार्य में संपूर्ण सहयोगी तन मन धन से बना हूँ, क्या मैं बाबा के काम को अपना काम समझता हूँ, क्या मैं बाबा का राइट हैंड हूँ या लेफ्ट हैंड हूँ। लोग कहते हैं ये उसका राइट हैंड है जी, सारा काम उनका यही करता है, इनसे मिल लो आपका काम हो जाएगा। तो हम बाबा के राइट हैंड बने हैं या लेफ्ट हैंड बने हैं, या वो हैंड बने हैं जो हैंड तो होते पर काम नहीं करते। कईयों को होते हैं ना, पैरालिसिस हो जाए, हाथ लटका रहा है ऐसे ऐसे, काम ही नहीं करता। कई पैरालिसिस वाले हैंड तो नहीं, राइट हैंड माना बाबा का कार्य सो मेरा कार्य। हर कार्य को दिल और लगन से करना, ये सोच के करना कि अब बाबा ने मुझे जिम्मेवारी दी है, अब मैंने अपना सब कुछ बाबा के लिए सफल करना है। पांचवी बात अपने आप से पूछिए, मैं ज्ञान में तो चल रहा हूँ, क्या ज्ञान भी मेरे में चल रहा है। दो बातें हैं ना, एक है सागर में गागर है, ठीक है, और दूसरी है गागर में सागर है भी कि नहीं, गागर खाली तैर रही है कि उसके अंदर पानी है भी। हम ज्ञान में तो चल रहे हैं, क्या ज्ञान हमारे में चल रहा है, ज्ञान हमारे में चल रहा है। हम बड़े नशे से कहते हैं मैं इतने सालों से ज्ञान में हूं, अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान कितने सालों से चल रहा है अंदर, मतलब धारणा कब से हुई, ज्ञान के अनुसार जीवन बनाया, ज्ञान के प्रैक्टिकल मॉडल हम बने या नहीं बने। ज्ञान के प्रैक्टिकल मॉडल जो आज भी बाबा ने कहा, हमारा चेहरा ही सेवा करे, चेहरा ही इतना हर्षित मुख हो जाए कि चेहरे के द्वारा सेवा हो सकती है नहीं हो सकती। लोग कहें इनको क्या मिला है, बड़े खुश रहते, हमसे पूछते थे मैंने तो जॉब की है, मैं तो दुनिया में रहा। लोग परेशान हो जाते थे, जॉब में छोटी सी बात होती थी डर जाते थे, कहते थे निकाल दिया तो बीवी बच्चों का क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। हम खुश रहते थे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, फिर हमें कहते थे आपका तो आगे पीछे कोई है नहीं। लेकिन जरूर ये पूछते थे कि आप खुश क्यों रहते हो हमेशा, कुछ भी हो जाए तो उनको क्या पता। फिर हम बताते थे कि खुशी का राज क्या है, क्योंकि हम खुशियां बांटते हैं, हम ज्ञान से भरे हुए हैं, खुशियों के सागर से हमने अपना संबंध जोड़ा हुआ है, इसलिए खुश रहते हैं। तो ये बाबा ने हमें देखो तीसरे नैन हमारे खोल दिए। अब ज्ञान का प्रैक्टिकल मॉडल कि लोग कहें सुख देखना है तो कहां देखें, इनके पास। शांति का अगर कहीं है तो इनके घर में है। ये लोगों को जब महसूसता होगी तो लोग आपके दीवाने बन जाएंगे, आपके भी भगत बन जाएंगे लोग, और लोग कहेंगे भाई हमारा भी बेड़ा पार लगा दो, आप बड़े खुश रहते हो। अपने आप पूछेंगे आपसे क्या किया जाए, नहीं तो आप पर्चे बांट लो, पैम्फलेट बांट लो, लोगों को कहो जी आओ हमारे प्रोग्राम में, चलो माउंट आबू स्वर्ग के दर्शन करा दें। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और एक है कि आप खुश रहो, लोग देखेंगे कि देखो इनके ऊपर इतनी बड़ी समस्या आई, आती है हर एक के पास आती है, समस्याएं तो आएंगी। बाबा कब बन गए, बाबा ये नहीं कहता कि बस मेरे बन गए तो समस्याएं खत्म, कहता कभी बाबा ऐसा? बाबा कहता और आएंगी, बस आपने बहादुर बनना है, अपने अंदर ताकत भरनी है ताकि समस्याओं का सामना कर सको। और माया तो बाबा कहता रुस्तम के साथ रुस्तम होके आती है, जो जितना बड़ा योद्धा उसके साथ उतने उसके मुकाबले का योद्धा बढ़ाया जाता है। पहलवानी कुश्ती होती है ना, तो ये तो नहीं एक छोटे पहलवान के साथ बड़ा पहलवान लड़ा देंगे, मुकाबला बराबर के साथ होता है। तो जिस व्यक्ति के पास जितनी बड़ी समस्या आती है, हम नयों को भी सिखाते हैं, इसका मतलब वो उतना ही ताकतवर है। भगवान जो जितना व्यक्ति बड़ा उतनी बड़ी समस्या उसके पास भेजता है। अगर वो समस्या में पास हो जाए, उस टेस्ट में पास हो जाए, तो उसकी प्रमोशन, उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी, वो अगली क्लास में चला जाएगा और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। एक बात मैं हमेशा याद रखता हूं, जब भी प्रॉब्लम आए सदा सोचो प्रॉब्लम्स हमें पावरफुल बनाती हैं। PNP प्रॉब्लम्स पावरफुल बनाने के लिए आई हैं, और प्रॉब्लम्स उसी के पास आती हैं जो ऑलरेडी पावरफुल हो। कई बार क्या होता है, कब कोई समस्या ऊपर नीचे जीवन में बात होती है, हम घबरा जाते हैं। घबराते इसलिए हैं क्योंकि हम अंदर से कमजोर हैं, अभी वो योग बल से बल भरा नहीं है जीवन में, इसलिए घबरा जाते हैं। और हमें लगता कोई साथ नहीं दे रहा, बाबा भी मेरी नहीं सुन रहा, बाबा के ऊपर डाउट आ जाता है, निश्चय हिल जाता है, संशय आ जाता है, बाबा मदद नहीं कर रहा। और हम क्या करते हैं, फिर बाबा का हाथ और साथ छोड़ देते हैं। ऐसे हर रोज क्लास में आते थे, अब क्लास में आना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, मैंने एक से पूछा, एक कुमार था, उनके सेंटर पे गया, मिला मुझे, जान पहचान हुई। 2 साल बाद दोबारा गया, मैं क्या, वो कुमार कहते अब नहीं आता। मैं क्या, क्यों नहीं आता, कहते उसका बिजनेस में कोई घाटा हो गया, कोई संबंधी मर गया, अब वो संशय में आ गया। क्यों, क्योंकि उसने ये उल्टी अपेक्षा रखी कि बाबा सब ठीक करेगा। करेगा तो सही, लेकिन जो आपका कर्म भोग है वो भुगतना तो आपको पड़ेगा ना। शक्ति वो देगा, और शक्ति भी तब मिलेगी जब उससे जुड़े रहोगे। अगर आपने उससे जुड़ाव बंद कर दिया, आना ही बंद कर दिया, उसको याद करना बंद कर दिया, उसकी वाणी पढ़ना बंद कर दी जहां से गाइडेंस मिलनी थी, मार्गदर्शन मिलना था, तो फिर शक्ति और मार्गदर्शन कहां से मिलेगा। आपने डिस्कनेक्ट कर दिया जहां से पावर आनी थी, तो फिर प्रॉब्लम से कैसे लड़ोगे। होना तो ये चाहिए कि जब कोई समस्या, कब जब कोई विघ्न, जब कोई चुनौती जीवन में आए, तो हम डबल फोर्स के साथ यहां आए। ऐसे एक दिन में एक बार आते हो, जब कोई समस्या घर में आ जाए दिन में 2 बार आना शुरू करो। ऐसे आधा घंटे याद करते हो, समस्या के टाइम कितना भी याद करना चाहिए, आधा घंटे के बजाय 1 घंटा याद करना शुरू कर दो। एक इतने समझदार तो भगत भी हैं, वो कहते सुख में सिमरन कोई ना करे, दुख में करे सभी। हमारे पास दुख आया, हमने बाबा को छोड़ दिया, उस वक्त तो उसकी ज्यादा जरूरत हमें थी, ये याद हमें रखना है। बाबा साथ देने के लिए बंधा हुआ है, बाबा हमारी मदद करेगा, लेकिन उससे संबंध तो बना के रखो, उसके लिंक में तो रहो। उससे अगर आपके अच्छा रिलेशन होगा, वो वक्त आने पे आपकी मदद करेगा। ये सबका अनुभव है, किसी से भी आप पूछ लो, बाबा के बच्चों से, आपका भी होगा कि जब कोई साथ नहीं देता तब वो साथ देता है। और जितने भी दुनिया के लोग हैं, जितने भी देहधारी हैं, जो आज हमें बड़े अच्छे भी लग रहे हैं, वो भी कई बार हमारा साथ छोड़ देंगे, क्योंकि हर एक की मजबूरी होती है, पर बाबा की कोई मजबूरी नहीं है। बाबा से अगर प्यार हुआ, वो आपको ऐसे निकाल देगा समस्या से, जैसे माखन से बाल निकालना आसान है, ऐसे आपको निकाल देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि समस्या आई कि नहीं आई, क्योंकि बाबा हमारा पिता भी है और माँ भी है। है माँ, माँ क्या करती है घरों में, अगर पिताजी बच्चे को सजा दे रहे, भाई इसको खाना बंद करो, इसने कहना नहीं माना, इसका खाना बंद करो, अब माँ क्या करेगी, माँ क्या करेगी, उसका दिल माँ का है, कोमल दिल है, वो क्या कहेगी, चुपचाप उसको चुपके चुपके खिलाती रहेगी। बाप से छिपाकर माँ उसकी मदद करेगी, उसको खिलाएगी। तो बाबा हमारी माँ है, वो भी कई बार दुनिया से छिपाकर, किसी को पता भी नहीं चलता कहां से मदद मिली और मदद मिल जाएगी। ऐसी मदद मिलेगी कि आपको भी पता नहीं चला कि कौन मदद करके चला गया। ऐसी कोई आपको मन में अच्छी पॉइंट बुद्धि में आ जाएगी, ऐसी ज्ञान की बात अंदर से आ जाएगी, आप कहोगे अब ऐसे इस समस्या से निकला जाता है। तो है ना बाबा फिर हमारी माँ। लेकिन बाबा मदद तब करेगा जब उसके साथ हमारी दोस्ती अच्छी होगी, संबंध अच्छे रखे होंगे। अगर बिगाड़ के रखी होगी तो कौन मदद करेगा। वो कहते हैं अपने पड़ोसियों से बना के रखो, पता नहीं कब काम आ जाए कोई। जो लड़ता रहेगा अपने पड़ोसी से, कल को बीमार भी हो जाए वो कहेंगे जाओ मरने दो इसको, कोई देखे हॉस्पिटल भी नहीं लेके जाएगा। और जिसने बना के रखी होगी, जो दूसरों की मदद की होगी, वो भी करेंगे। ऐसे ही बाबा के साथ है, बाबा के काम में आपने मदद की तो बाबा आपके काम में मदद करेगा ही करेगा। आपको फील होगा बाबा साथ दे रहा है। बाबा के रास्ते पे चले, बाबा की श्रीमत पे चले, तो बाबा भी आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। और आपका विश्वास भी हो, निश्चय हो कि वो मेरी मदद नहीं करेगा तो किसकी करेगा, मैं ही तो उसका सपूत बच्चा हूं, मैं उसकी आज्ञा पे चलता हूं, उसके कहने पे मैंने इतना सब कुछ कर दिया, मेरी तो बात मानेगा, क्यों नहीं मानेगा। हठ से भी कई लोग मात बना लेते हैं, बच्चे पिताजी के साथ हठ करके भी ले लेते हैं चीज। तो बाबा भी, बाबा के पास बैठ जाओ, बैठे रहो कमरे में आधा घंटा घंटा दो घंटा, जब तक वो हाँ ना कर दे उठो ही ना। उसी को तो बाबा योग कहता है, दो घंटे योग करो। दो घंटे में करना क्या है, आपने बैठ जाना है, उसके पीछे पड़ जाना है कि ये चीज मुझे ऐसे ऐसी करनी है, कैसे भी करके कराओ। वो मजबूर हो जाएगा, वो बंधा हुआ है करुणा निधान, वो करुणा का सागर है, वो करुणा करेगा। पर उसके पास बैठो तो सही। एक वो बात कर कहते हैं दादी, एक हमारी दादी चंद्रमणि थे पंजाब में, वो सुनाते थे, कहते अगर आपकी गाड़ी खराब है, अब आप गाड़ी गैरेज पे खड़ी तो करो, तभी ठीक होगी ना। आप सोच रहे हो कि घर में पड़ी पड़ी ठीक हो जाए, तो घर में तो नहीं ठीक होगी। आप गैरेज में खड़ी करोगे तभी तो मैकेनिक ठीक करेगा। उसी तरह अब हमारा मन खराब हो रखा है, समस्या है, वो ठीक तब होगी तब जब बाबा के पास गैरेज में बैठेंगे, बाबा के कमरे में बैठेंगे, बाबा से जब बातें होंगी तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा। बातचीत से कहते हर समस्या का हल है, हर चीज बातचीत से सॉल्व की जा सकती है। तो बाबा से साथ बैठिए, बात कीजिए, आप करते होंगे लेकिन और ज्यादा कीजिए, तब जीवन में आगे बढ़ा जाता है। एक बार कहते कुंज दादी से, बाबा के पास थी मधुबन में, जो पटना में रहते थे कुंज दादी, तो मधुबन में कुंज दादी बाबा के पास गई कि बाबा आज एक ऑफिसर आपसे मिलने आने वाला है, तो आप तैयार रहना, आपसे उनको मिलवाना है। बाबा ने कहा ठीक है ले आना जब आए। अब वो ऑफिसर अपने निर्धारित टाइम पे आ गया, तो दादी बाबा के पास गई, बाबा अनाज साफ कर रहे थे कि बाबा वो ऑफिसर आ गया है और आपने उनसे मिलना है। तो बाबा ने कहा ठीक है उसको ले आओ, यहाँ बच्ची यहीं ले आओ उसको। अब दादी को संकल्प चला कि ये तो अनाज साफ कर रहे हैं, वो ऑफिसर सोचेगा पता नहीं कौन है। तो बाबा दादी ने उनको कहा बाबा वो मिलने आया है तो कमरे में मिलते हैं। बाबा ने कहा नहीं नहीं बच्ची इसको यहीं ले आओ। वो नाक साफ करते रहे। अब दादी ने, बाबा ने कहा है तो कहना तो मानना था। अब दादी उस ऑफिसर को बाबा के पास ले आई। उसको डाउट था, पता नहीं क्या असर पड़ेगा इसको, कहीं सोचेगी ये तो कौन है साधारण सा आदमी अनाज साफ कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति ऑफिसर बाबा के पास आया और बाबा की उसको दृष्टि पड़ी, उसको विष्णु का साक्षात्कार हो गया और वो बाबा के पांव में पड़ गया। तो ये है अपनी अवस्था। बाबा की इतनी ऊंची अवस्था थी कि वो साधारण कर्म करते हुए भी दूसरे को विष्णु नजर आ रहा है। क्या हमारी अवस्था ऐसी है कि हम कोई भी कर्म करें हमसे बाबा का लोगों को साक्षात्कार हो जाए, हमारे से भगवान का साक्षात्कार हो जाए? वो अवस्था, साक्षात्कार ना भी हो उनको, कम से कम इतना तो फील हो वो भी भगवान की याद में बैठ जाए, उनको इतना तो फील हो कि ये भी कोई महान आत्माएं हैं, ये ना वो हमारे ऊपर तरस खाएं हमारी शक्ल देख के, कहां फंस गए बेचारे, कहां जाके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं हमारे बारे में, इतने जवान आदमी पढ़े लिखे अच्छे देखने में पैसे वाले, फिर भी वहां इनके चक्करों में आ गए, कई ऐसा भी तरस खाते। अब वो तरस ना खाएं, बल्कि उनको लगे कि ये तो इन्होंने तो अपना जीवन बना लिया, ऐसा जीवन तो सबका नहीं बनता, ये लोगों को लगना चाहिए। और वो लगेगा जब हम अपने हर चीज के ऊपर अटेंशन देंगे, अपना मन वचन कर्म हर चीज के ऊपर अटेंशन, हर चीज हमने अपनी रॉयल बनानी है। क्योंकि जो विशेष आत्माएं होती हैं, जो हीरो एक्टर होते हैं, उनका चलना फिरना उठना बैठना हर चीज खास होती है, और नॉर्मल जैसे लोग होते हैं वैसे नहीं होते, उनके बोलने का स्टाइल, हंसने की स्टाइल, किसी के साथ व्यवहार करने का स्टाइल, हर चीज रॉयल होती है। जो रॉयल फैमिली के लोग होते हैं, जो हीरो होते हैं, लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाता है कि वाह क्या एक्टिंग है, चाहे वो कुल्ली का भी काम कर रहा है, अमिताभ बच्चन कुल्ली का काम कर रहा है फिल्म में, लेकिन लोग कहते हैं वे कुल्ली हो तो ऐसा हो, वो कुलियों के भले के लिए काम कर रहा है, कुलियों के हक का काम दिला रहा है उनको, तो लोग उसको पसंद की उसकी एक्टिंग, क्योंकि हीरो एक्टर। हम चाहे झाड़ू लगाएं, हम चाहे कुछ भी काम करें, बाबा कहता काम इंपॉर्टेंट नहीं है, सेवा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेवा भाव इंपॉर्टेंट है, किस भावना से कर रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर हमने बर्तन भी इतने अच्छी तरह से साफ किए, इतनी अच्छी तरह से चमकाए, तो उससे भी सेवा हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि भाषण ही करो, जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे काम जो लोग समझते हैं वही करो। एक व्यक्ति वेटर है, वो वेटर इस तरह से चाय पेश करता है अपने क्लाइंट को, लोग इंप्रेस होते हैं स्टाइल से देता है। और एक है सिंपल से ढाबे में चले जाओ, फेंक के चला जाएगा चाय रख के, पांच छह गिलास इकट्ठे पकड़े हुए हाथ से, सबको एक चाय का गिलास दे के चला जाएगा, आधी उंगलियां भी उसकी चाय में घुसी होंगी। और एक है बड़े स्टाइल से देता है फाइव स्टार होटल में, फर्क है ना काम और काम में, कोई काम छोटा नहीं कोई काम बड़ा नहीं, ये काम करने वाला उसको छोटा या बड़ा बना देता है, कोई सेवा छोटी नहीं कोई सेवा बड़ी नहीं। दिल में ख्याल हो कि बाबा का काम कर रहा हूं, बाबा के लिए कर रहा हूं, इससे बाबा सबसे ज्यादा इंप्रेस कौन होता है, आपके जो बाहर के लोग कहेंगे बड़ा साफ सुथरा है, ज्ञान से नहीं होते इतना ज्यादा, सफाई से ज्यादा होते हैं। तो जिसने झाड़ू लगाया पोछा लगाया उसको नंबर मिले या नहीं मिले, कोई भी काम करो लेकिन अच्छी भावना से करेंगे, बाबा भावना का भाड़ा देता ही है। अब मान लो हमने अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, बाबा कहता तीव्र पुरुषार्थी बनो। श्रेष्ठ पुरुषार्थी कैसे बना जाता है, कौन है तीव्र पुरुषार्थी, कैसे हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ें? आप में से कुछ नए होंगे कुछ पुराने भी होंगे, हर व्यक्ति ज्ञान में आगे बढ़ना चाहता है क्योंकि उसे ये समझ मिल चुकी है समय कम है, काम ज्यादा है। मंजिल दूर है पर पहुंचना भी जरूर है। इसलिए वो सोचता तो है कि मैं भी कुछ करूं, चाहे वो 2 दिन का ही बाबा का बच्चा है, उसको भी बाबा ने सपने तो राजा बनने के दिखाए ही है ना, राजा तो सपने बनना लक्ष्य दिया हुआ है। सोचता तो वो भी है कि मौका मिल जाए तो राजा तो मैं ही बनूं, अष्टलतनों में मैं भी आ जाऊं, चाहे वो मेहनत करे या ना करे, लेकिन हर कोई सोचता तो जरूर है। जैसे पॉलिटिक्स में हर कोई सोचता है कि काश कभी मेरी भी मुकद्दर जगे, मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। बड़े लोग ख्वाब देखते रहते हैं, पर ज्यादातर के ख्वाब ख्वाब ही रह जाते, हकीकत में बदलते नहीं, कोई कोई बन जाता है। ऐसे ही हम सब चाहते तो हैं और बाबा ने लक्ष्य दिया है कि वहां जाना है, पर पहुंचते क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं गड़बड़ रहती है, कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में मार्जिन रह जाती है। जो हम अष्ट रत्नों में, 108 रत्नों में, रॉयल फैमिली में कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं। अब बाबा कहता आपने आना है, लक्ष्य ऊंचा रखना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है। उसका एक फार्मूला आपको बताता हूं। जो आगे बढ़ने वाला व्यक्ति होगा, कहीं भी देख लो दुनिया में, किसी भी क्षेत्र में देख लो, जिसने आगे बढ़ना है उसके आगे कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो रुकता नहीं है। वो किसी भी परिस्थिति में अपनी उन्नति का, अपने प्रोग्रेस का रास्ता बना लेता है। जैसे नदी के आगे कितनी भी बड़ी कोई बाधा आ जाए, पहाड़ रख दो, चट्टान रख दो, पर नदी रुकती है? नदी को कोई रोक सकता है? पानी कहता मेरा काम है आगे की ओर बहना, मैं तो बहके ही रहूंगा। उसी तरह नदी कहती मैं ना रुकूंगी, मेरे को कोई रोक नहीं सकता, मैंने आगे जाना ही है, रुकना मेरा काम नहीं है। इसी तरह जो तीव्र पुरुषार्थी होता है वो कहता रुकना मेरा काम नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो, हर कदम पे बढ़े चलो। वो हर कदम पे आगे की ओर बढ़ता है। क्यों आगे की ओर बढ़ता है? क्योंकि मंजिल दिखाई देती है। जब मंजिल सामने हो तो कोई बहाना काम नहीं आता। हम कई बार एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, खुद ही खुद को बहाने शिकायतें देते रहते हैं, अब ये हो गया, अगर ये ठीक हो जाए ना, अगर ऐसा हो जाए, अगर वैसा हो जाए तो मैं ठीक पुरुषार्थ करूंगा। कई माताएं हैं, बच्चे बहुत तंग करते हैं, बहुत छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे ना फिर मैं पुरुषार्थ करूंगी। कई कहेंगे मेरा पति ज्ञान में नहीं चलता, मैं अकेले क्या करूं। पति ज्ञान में चल पड़े फिर देखना हम महायोगी बन जाएंगे। कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ, कोई स्टूडेंट होगा सोचेगा भी तो पढ़ाई में बड़ा दिमाग लग रहा है, एक बार पढ़ाई पूरी हो जाए फिर देखना मैं क्या कमाल करूंगा। मतलब कोई ना कोई शिकायतें हमारी रहती हैं, कोई ना कोई परिस्थितियां बनी रहती और हम इंतजार करते रहते हैं कोई उन कारणों को दूर करने का, कि कारण खत्म हो तब कुछ हो। लेकिन बाबा कहता कारण का निवारण ढूंढना है। कारण तो रहेंगे, समस्याएं शुरू से लेकर एंड तक रहेंगी, एक खत्म होगी दूसरी आ जाएगी, दूसरी खत्म तीसरी आ जाएगी, लेकिन कुछ भी हो आपने अपना रास्ता खुद बनाना है अगर आप चाहते हैं ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना। आपने रुकना नहीं है, रोकने की कोशिश होगी माया खड़ी है, माया रावण खड़ा है, परीक्षा बन के आएगा, वो जरूरी है, टेस्ट करता है कि पक्का है कि नहीं। लेकिन नजर आपकी निशाने पे होनी चाहिए, आपकी नजर आपके लक्ष्य पे होनी चाहिए। कभी भी लक्ष्य विहीन नहीं बनो। माया सबसे पहले हमें हमारा लक्ष्य भुला देती है, भूल जाते हैं क्यों आए थे यहां, क्या करने आए थे, और ही चक्रों में पड़ जाते हैं। ये माया सबसे बड़ी गफलत सबसे पहले लक्ष्य को भुला देती है। लेकिन जिनकी निगाहें लक्ष्य पे हो वो कभी गफलत नहीं कर सकते, कभी हार नहीं खा सकते। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा, कहते निगाहों में मंजिल थी, क्या थी? निगाहों में मंजिल थी, लक्ष्य था, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। गिरे भी यदि कि हर बार सीधे चलोगे, कभी कभी गिर भी जाओगे। गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने तमाम कोशिशें की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो आप कौन हैं? चिराग। तूफान तो आएंगे, वो गाना सुना है ना पुराना, ये कहानी है दिए और तूफान की। तूफान आएंगे, दिए को बुझाने की कोशिश होगी, लेकिन आपने अपना दिया संभाल के रखना है, उसको बुझने नहीं देना है। वो तब होगा जब लक्ष्य याद रहेगा, और जब वो याद रहा तो आपका जीवन सुखमय बन गया। ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसकी चाबी ना हो। है कोई किसी कंपनी का? गोदरेज के ताले फेमस हैं, लेकिन उनकी भी चाबी बनी हुई है। ऐसी कोई समस्या है जिसकी सलूशन ना हो? जितनी भी समस्याएं हैं उनके भी हल हैं, हमें हल नजर नहीं आते। जैसे हर ताले की चाबी है, ऐसे ही हर समस्या का भी कोई ना कोई हल है। धैर्य से बाबा को याद करके, बाबा से पूछ के योग में बैठेंगे, हल मिल जाएगा। बाबा की कोई वाणी पढ़ लेंगे, वाणी में भी हल मिल जाएगा, किसी ना किसी तरह से समस्या खत्म हो जाएगी, अगर उसको साथी बना के रखा। कुछ भी हो जाए, आपने अपनी स्वीकार करने की ताकत भी बढ़ानी है। कई बार हमारी शिकवे ये रहते हैं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं, मेरा दिमाग ज़्यादा नहीं चलता, बुद्धि भी काम नहीं करती, मेरे साथ ये दिक्कत, मेरे साथ वो दिक्कत, मेरे घर में दिक्कत, मेरे परिवार में दिक्कत। लेकिन बाबा कहता जो कुछ है जैसा है उसे स्वीकार करके आगे बढ़ते जाना है। आगे बढ़ना ही जिंदगी है, रुक जाना मौत के बराबर। रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, चलते चलना है। चाहे एक कदम चलो दिन में, पर चलो जरूर। अगर बैठ गए घर में तो बैठ गए बीमारी बढ़ती जाएगी। आपकी प्रोग्रेस का ग्राफ डे बाई डे ऊपर की ओर जाना चाहिए। हर दिन कल से आप ज्यादा बेहतर होने चाहिए, कल से ज्यादा खुशी आपके पास होनी चाहिए, कल से ज्यादा योग बल आपने इकट्ठा किया हो, क्योंकि आपने तो सारी समस्याएं, संसार की समस्याओं का हल करना है। करना या नहीं करना? लोग किसके पास आएंगे? लोग दुखी होंगे। धीरे धीरे दुनिया में दुख परेशानियां बहुत बढ़ रही हैं, बहुत बढ़ रही हैं, बात मत पूछो। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर सुसाइड कर रहे हैं, धार्मिक गुरु सुसाइड कर रहे हैं। अभी पीछे खबर आई इंदौर में एक धार्मिक गुरु सुसाइड कर रहा है, ऐसा हाल हो रखा है दुनिया का। वो डिप्रेशन में कहते हैं 2 साल से धार्मिक गुरु और अच्छा फेमस, उसको सरकार ने राज्य मंत्री तक का दर्जा दे रखा था। तो ऐसा हाल है दुनिया का, सुखी नहीं है लोग। कल को पता चला कोई मंत्री सुसाइड कर गया, क्या पता चले कलयुग में बढ़ते जा रहे दुख। तो ऐसे हालात में जब ये दुनिया धीरे धीरे मेंटल हॉस्पिटल बनती जा रही है, लोग डिप्रेशन और टेंशन का शिकार होते जा रहे हैं, उनकी मदद कौन करेगा? कौन मदद करेगा उनको? उनके दुख से कौन निकालेगा? वो भगवान को बुलाते हैं, भगवान से कनेक्शन है नहीं। कनेक्शन तो आप लोगों से मिलते हैं, आपके आसपास रहते हैं, कनेक्शन तो आपको भगवान से, शिव बाबा से शक्ति लेके उनको शक्ति देनी पड़ेगी। जैसे सूरज की एनर्जी है, सूरज की एनर्जी, सूरज हर रोज चमकता है, तो सब लोग सूरज की एनर्जी ले सकते हैं? कोई व्यक्ति गुफा के अंदर छिप जाए सूरज की एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन उसके लिए सोलर सिस्टम बना है। अगर सोलर एनर्जी को हम उसी सूरज से लेके लाइट में बदल देते, सोलर लैंप, उसी से सोलर कुकर बन के खाना भी बन रहा है, उसी से सोलर हीटर बन गया, कई चीजें बन गई, तो सोलर सिस्टम बीच में है जो सोलर एनर्जी को यूज करने लायक बनाता है। तो बाबा क्या है? ज्ञान सूर्य, वो एनर्जी का भंडार है, शांति प्रेम आनंद से सागर है, लेकिन उस सोर्स से लोग जुड़ नहीं पाते डायरेक्ट, उन्हें जुड़ना आता ही नहीं है, पहचान ही नहीं है, तो जुड़ेंगे कैसे? तो अब आपने खुद अपने आप को सोलर सिस्टम बना के उन तक परमात्मा का शांति, प्यार, खुशी, आनंद पहुंचाना है। आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। वो कहते दुखियों पे रहम करो, माँ बाप हमारे, गीत है पुराना, वो आपको ही तो बनना है, आप दुखियों के ऊपर रहम करने वाले, पर अगर खुद ही दुखी हुए तो खुद ही रोने वाले, चार आदमी मर गए आप भी रोने लग गए, भाई मर गए जी क्या करें, उनको जो बच गए उनको चुप कौन कराएगा फिर? तो आपने तो उनको स्टेबल करना है, दुखियों की दुख दूर करने हैं, कर सकते हैं? तो ये आज से आप सोचना कि हमारी जिम्मेवारी, हमारी भूमिका अब लोगों को, लोगों के कल्याण करने की है, उनके ऊपर रहम करने की है, उनके ऊपर भला करने की है। तभी जो जितना का भला करेगा ना उतना बड़ा राजा बनेगा, जो अपना ही भला करेगा वो अपना ही राजा रहेगा, और जो जितने ज्यादा लोगों का भला करेगा, अपनी प्रजा का ध्यान रखेगा, वो उतना ही बड़ा राजा बनने वाला है। ठीक है सभी? ये बात एग्री करते हैं? तो आज से क्या पुरुषार्थ करेंगे, किस चीज के ऊपर अटेंशन देंगे? लक्ष्य को सामने रखना है, और मेहनत में कसर ना रह जाए। कल को आपका दिल ना कहे कि मैं कर सकता था पर किया नहीं मैंने। और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है
तो बाहर आना ही पड़ेगा,
बाहर आना ही पड़ेगा। अब आप लोग प्रत्यक्ष होने वाले हैं देवता, सबको पता चल जाएगा। सफल करना, सब देवता प्रत्यक्ष होंगे। अब शिव बाबा तो आजकल गायब हो रहा है, अब कौन प्रत्यक्ष होंगे? आप बच्चे चैतन्य तारे प्रत्यक्ष होंगे, तो आपको लोग मास्टर भगवान समझ के आपके पांव पड़ जाएंगे, पर पड़ेंगे उसके जिससे कुछ मिलेगा, जिससे मिलेगा नहीं वो भाग जाएंगे, कहेंगे दूसरे को पकड़ लो भाई, लोग तो दल बदलू होते, जिधर प्राप्ति दिखेगी उधर चले जाएंगे। 33 करोड़ देवता है, किसी न किसी के पीछे जहां से मिलेगा कुछ वहां जाएंगे, बाकी वो कहेंगे भैया तो मेरे को कच्चे देवता लग रहे हो।
सोलर कम बोले ना, बम गया है, तो एक मिनट फिर बोलते सोलर एनर्जी का,
सोलर एनर्जी का इसके बाद बोलते हैं, मैं फिनिश कर दूं फिर आप बोलना, इसको एक बार फिनिश कर दें।
हाँ।
सोलर एनर्जी की बात हुई, लास्ट में एक बात कह के पूरी करता हूं। सोलह कला, सोलर से सोलह याद आ गया। बाबा कहता इतना पुरुषार्थ आपने करना है कि 16 कला संपूर्ण बन जाएं। अगर आपने बड़ी मेहनत की, 15 कला तक पहुंचे, मान लो अभी तो जीरो है ना कलयुग में, शून्य से आप कहां तक पहुंच गए? 15 कला, 15 कला मतलब 90% तक पहुंच गए। अब 15 कला तक आपने पहुंच गए, एक कला रह गई, एक कला की कमी रह गई, तो आपकी एंट्री सतयुग में कहां होगी? बीच में, सतयुग के बीच में, मतलब आला सतयुग चला गया, मतलब लक्ष्मी नारायण को देख भी नहीं पाओगे। अच्छा आपने थोड़ी और कम की, 14 कला 80% तक पहुंचे, फिर क्या होगा? तो पूरा सतयुग मिस हो जाएगा। देखो एक एक कला का, जैसे बच्चों का होता है ना 60% तक हर एक के नंबर आ जाएंगे, 60 से 70 के लिए ज्यादा मेहनत, 70 से 80 और ज्यादा मेहनत, 80 से 90 सबसे ज्यादा मेहनत, और 90 से ऊपर लेने हो फिर तो आपको टू मच मेहनत, एक एक नंबर आगे लेना मुश्किल होता है। 60 तक तो बिना पढ़े भी आ जाते हैं आजकल। तो आप समझो त्रेता के एंड में कितनी कला रह जाएंगी, 14 कला या उधर 8 कला। 8 कला तक तो आप ऐसे पहुंच जाओगे बिना कुछ किए भी। जो एक बार बाबा का बन गया वो बाबा कहता त्रेता में तो एंट्री है ही है, चाहे त्रेता के एंड में भी हो। तो 8 कला तक तो बाबा पासिंग मार्क्स आपको दे देगा जिसने मेरा बाबा कहा, लेकिन उसके आगे एक एक कला को बढ़ाना कितना बड़ा बात है। इसलिए थोड़े में खुश नहीं होना कि सतयुग की तो स्वर्ग के गेट पास मिल गई, सतयुग में तो आ ही जाएंगे, सतयुग में भी त्रेता में आ जाएंगे, लेकिन कितना नुकसान थोड़ा सा भी रह गया तो आपका हो सकता है। जितनी ज्यादा बड़ी प्राप्ति उतना ज्यादा ही थोड़े से कम से नुकसान भी हो सकता है। इसलिए बाबा कहता सावधान अलर्ट होशियार, अब समय सोने का नहीं जागने का है, और सबको जगाने का है, तीव्र पुरुषार्थी बनने का है, अपना सब कुछ सफल करने का है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।
ओम शांति। सभी ने सुना रिचार्ज में, फुल रिचार्ज क्या करना है अभी सोचा था। एक पॉइंट देखो उन्होंने कितने सुंदर कहा, जब बातें आती हैं, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, उस समय हमें बाबा को कस के और भी पकड़ना चाहिए, जबकि हम उसी समय ही बाबा को छोड़ देते, भूल जाते, उसी समय ही बाबा की जरूरत है जिस समय हम उसको छोड़कर बैठ जाते चुपचाप, और उसी समय ही योग की भी उतनी जरूरत है जिस समय हम योग को भी योग भी नहीं उस समय हम देखो, है ना। तो पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, और कई बार हमारा पुरुषार्थ कौन से दिशा में चला जा रहा है ये हमें भी पता नहीं चलता है ना, और कई बार जानबूझ करके भी हम छोड़ देते हैं। तो भाई साहब आपने बहुत सुंदर सो पुरुषार्थ के लिए हमें कौन कौन सी बातों के ऊपर अटेंशन देना है तथा आगे क्या करना है आपने अपनी सुंदर रीति से हमें समझा नहीं दी, इसलिए तहे दिल से सभी ब्राह्मण परिवार की ओर से आपको धन्यवाद। आपको पहली बार आए और हमारे रिक्वेस्ट है कि विशेष हमें बेंजी तो नहीं है, कटक गए हुए हैं, बेंजी को हम बोलेंगे कि विशेष रौक्यलक के प्रोग्राम के लिए आपको यहाँ आना है।